Om Shanti. आज के प्रातः क्लास है 12 अक्टूबर 1967।
ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 12 अक्टूबर 1967।
बच्चों को बाप समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ करके बैठो।
द फादर एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन, सिट कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी अ सोल।
और फिर बाप को याद करो।
एंड देन रिमेम्बर द फादर।
समझाने वाला कौन है?
हु एक्सप्लेन्स?
देह का बाप देहधारी नहीं है।
इट इजंट द फादर ऑफ द बॉडी, द बॉडीली बीइंग।
देह में रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है।
द फादर ऑफ द सोल दैट रिसाइड्स इन द बॉडी इज द सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल।
देह होती है साकार पांच तत्वों की।
द बॉडी इज अ कॉर्पोरियल थिंग मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स।
तो देह का बाप भी 5 तत्वों का पुतला, वो भी देहधारी होता है।
सो द फादर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो एन एफिजी ऑफ 5 एलिमेंट्स, ही इज ऑल्सो अ बॉडीली बींग।
और देह में रहने वाली आत्मा 5 तत्वों की नहीं बनी हुई है।
एंड द सोल रिसाइडिंग विद इन द बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स।
5 तत्व तो अपना रूप बदलते रहते हैं।
द 5 एलिमेंट्स कीप चेंजिंग देयर फॉर्म।
आज है कल नहीं रहेगा देह का रूप।
द फॉर्म ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट टूडे, इट वुड नॉट बी प्रेजेंट टूमोरो।
और आत्मा तो आज भी है, पहले भी थी और हमेशा भी रहेगी।
बट द सोल इज प्रेजेंट टूडे, इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट अर्लियर, इट वुड बी प्रेजेंट ऑलवेज।
तो वो आत्मा का बाप परमात्मा भी ऐसा ही है।
सो दैट फादर ऑफ सोल दैट इज द सुप्रीम सोल इज ऑल्सो लाइक दिस।
सदाकाल था, सदाकाल है और आगे भी रहेगा।
ही वॉज एटर्नल, इज एटर्नल एंड ही विल बी एटर्नल इन फ्यूचर टू।
आत्मा ज्योति बिंदु।
द सोल इज अ पॉइंट ऑफ लाइट।
उसका बाप भी ज्योति बिंदु।
इट्स फादर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट।
आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा।
इट इज सेड फॉर द सोल दैट अ वंडरफुल स्टार शाइन्स इन द मिडल ऑफ द फोरहेड बिटवीन द टू आईब्रोज।
तो सितारा चमकता हुआ तो नहीं दिखाई देता है।
दैट स्टार इज नॉट विजिबल इन अ शाइनिंग फॉर्म।
उनको देता है?
इज इट विजिबल टू एनी वन?
हाँ, कोई बहुत कॉन्सेंट्रेशन करे तो सितारा चमकता हुआ दिखाई भी पड़ता है, या कोई को साक्षात्कार में भी होता है।
यस, इफ समवन कॉन्सेंट्रेट्स वेरी मच देन द शाइनिंग स्टार इज विजिबल और इट मे बी विजिबल टू समवन इन द विजन्स।
तो हम सब हैं बिंदु बिंदु आत्माएं।
सो ऑल ऑफ अस अ पॉइंट लाइक सोल्स।
और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा।
एंड द फादर ऑफ ऑल द पॉइंट लाइक सोल्स इज द पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल।
हमारी देह का नाम पड़ता है क्या?
आर नेम फॉल्स ऑन द बॉडी। व्हाट?
हमारी देह का नाम पड़ता है।
आर नेम फॉल्स ऑन द बॉडी।
और जो आत्माओं का बाप है उसको अपनी देह नहीं है।
एंड द फादर ऑफ द सोल्स डज नॉट हैव हिज बॉडी।
वो विदेही है हमेशा।
ही इज फॉर एवर बॉडीलेस, विदेही।
इसलिए उसकी आत्मा का नाम है शिव।
दैट इज वाई द नेम ऑफ हिज सोल इज शिव।
हमारी आत्मा का नाम शिव नहीं है।
द नेम ऑफ आर सोल इज नॉट शिव।
शिव माने कल्याणकारी।
शिव मीन्स कल्याणकारी, दैट इज बेनिफैक्टर।
हम आज कल्याण करते हैं और कल कोई का कल्याण कर देते।
टुडे वी कॉज बेनिफिट एंड टुमोरो वी कॉज हार्म टू समवन।
दूसरों का छोड़ो अपना ही कल्याण कर लेते
लीव अदर्स बिकॉज हार्म टू आवरसेल्फ
तो हम की हमारी सब की आत्मा शिव नहीं कही जा सकती
सो वी ऑल सोल्स कैनॉट बी कॉल्ड शिव
हाँ उस ज्योति बिंदु आत्मा शिव है कि हम बच्चे हैं
यस वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ लाइट सोल शिव
नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्याणकारी है
वी आर नंबर वाइज बेनिफैक्टर्स अकॉर्डिंग टू आर एफर्ट्स
बिंदु इन आंखों से दिखाई नहीं देता
द पॉइंट इज नॉट विजिबल टू दीज आईज
लेकिन इन आंखों में उस ज्योति बिंदु की रोशनी तो दिखाई देती है
बट द शाइन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ लाइट इज विजिबल इन दीज आईज
आदमी शरीर छोड़ देता है
व्हेन अ मैन लीव्स हिज बॉडी
तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं
द आईज बिकम लाइक बटन्स
आंखों में रोशनी रहती है नहीं रहती
डज एनी शाइन रिमेन इन द आईज इट डज नॉट रिमेन
तो हम आत्माएं रोशनी स्वरूप तो हैं
सो वी सोल्स आर इंडीड फॉर्म्स ऑफ लाइट
जिनकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है
हूज लाइट इज रेडिएटिंग थ्रू दीज आईज
लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है
बट इट इज सो सटल
कि इन आंखों से वो देखने में आती नहीं है कि वो रोशनी कहाँ से और कैसे निकल गई
दैट इट इज नॉट विजिबल थ्रू दीज आईज दैट फ्रॉम वेयर एंड हाउ डिड दैट लाइट एग्जिट
मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत प्रयोग करके देखे
When a human being leaves his body, scientists have performed many experiments.
कि आत्मा कैसे निकल जाती है
And seen how the soul exits.
मरते हुए आदमी को शीशे के कमरे में बंद कर दिया
They confined a dying person in a glass room.
शीशा का तो बनाया तो उसे बंद कर दिया
They made it of glass and confined him inside.
आत्मा निकल गई और शीशा फट गया
The soul escaped. And the glass cracked.
इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी ताकत
सच पावर इन सच अ स्मॉल सोल
हाँ जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी उसमें ताकत भी ज्यादा होती है
यस द मोर सटल अ थिंग द मोर पावरफुल इट इज
एटम कितना छोटा होता है
एटम इज सो स्मॉल
यंत्रों से एटम को देखा जाता है
Atom is observed through machines.
जिससे एटम बम बनते हैं
एटम बॉम्ब्स आर प्रिपेयर्ड विद इट
कितनी ताकत होती है
देयर इज सो मच पावर इन इट
वो तो फिर भी यंत्रों से देखा जाता है
इवन देन दैट इज ऑब्जर्व थ्रू द मशीन्स
लेकिन आत्मा को तो यंत्रों से भी देख नहीं सकते
बट द सोल कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू मशीन्स
इतनी सूक्ष्म आत्मा और वो भी नंबर वार है
सो सटल अ सोल एंड दैट टू इज नंबर वाइज
क्या एक आत्मा की पावर न मिले दूसरी आत्मा से
वॉट द पावर ऑफ वन सोल डज नॉट मैच विद द पावर ऑफ अनदर सोल
जैसे छोटी बड़ी बैटरीज होती है ना गाड़ियों में बैटरी होती है छोटी छोटी
जस्ट इज देर आर स्मॉल एंड बिग बैटरीज आर इन देर आर स्मॉल बैटरीज इन वॉचेस
कोई में कम पावर कोई में ज्यादा पावर
सम हैव लेस पावर एंड सम हैव मोर पावर
तो ऐसे ही ये ज्योति बिंदु आत्माएं इनमें नंबर वार पावर भरी रहने की अपनी अपनी शक्ति है
सो सिमिलरली देयर इज इंडिविजुअल कैपेसिटी टू रिटेन नंबर वाइज पावर इन द पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स
सबसे ज्यादा पावरफुल आत्मा है सुप्रीम सोल शिव की
The most powerful soul is the supreme soul Shiv.
परंतु वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है
But he does not come in the cycle of birth and death.
इसलिए गर्भ से जन्म नहीं लेती
That is why he does not take birth through a womb.
अगर वो भी गर्भ से जन्म लेने लगे
If he too starts taking birth through the womb,
तो हम जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं
देन देर इज नोबडी टू लिबरेट अस सोल्स हु एंटर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ
वो सुप्रीम सोल शिव है इसलिए विदेही कहा जाता है
दैट इज द रीजन व्हाई द सुप्रीम सोल शिव इज कॉल्ड विदेही bodiless.
माने देह के विपरीत है.
It means that he is opposite to the body.
हम आत्मा हैं, देह के विपरीत नहीं है.
We souls are not opposite to the bodies.
हम तो देह के अनुकूल भी हो जाते हैं और हैं भी.
We become favorable to the body and we are indeed so.
अभी हमको कोई कहे कि हम विदेही हैं कि देही हैं.
If anyone asks us that are we bodiless, that is videhi, or embodied, that is dehi.
अभी तो हम देही हैं, हमारी बुद्धि देह में धरी रहती है.
Now we are dehi, that is embodied. Our intellect remains engrossed in the body.
देहधारी हैं, घड़ी घड़ी देह में बुद्धि जाती है.
We are bodily beings. Our intellect gets attracted to the body every moment.
अपनी देह में बुद्धि जाती है, दूसरों की देह में बुद्धि जाती है, देह के पदार्थों में बुद्धि जाती है.
The intellect gets attracted to its body and the intellect gets attracted to others' body. The intellect gets attracted to the things related to the body.
लेकिन वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता भी है.
But that supreme soul father does come in this world.
जैसे हम आत्मा इस सृष्टि पर आकर के 84 के चक्र में अपना पार्ट बजाती हैं.
Just as we souls come to this world and play a part in the cycle of 84 births.
वो भी आता है, देहधारियों में प्रवेश भी करता है.
He too comes. He even enters into the bodily beings.
बल खास करके मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है.
Although he especially enters in the appointed chariot.
उसके बावजूद भी उसको देह का आकर्षण नहीं होता.
Despite that, he does not get attracted by the body.
देह के प्रति अटैचमेंट लगाव नहीं होता.
He does not develop attachment towards the body.
और हमको देह के प्रति लगाव हो जाता है.
And what about us? We develop attachment for the body.
वो भी लगाव नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रैक्टिस करने से टूट सकता है.
Even that attachment can break number wise through the practice according to one's efforts.
सबका एक जैसा नहीं टूटता है.
Everyone does not become detached in the same way.
इतनी बड़ी विश्व में मनुष्य आत्मा की कैटेगरी की आत्माएं कितनी 500-700 करोड़.
In such a big world, how many souls are there in the category of human souls? 5 to 7 billion.
जैसे बीज होते हैं ना.
Just as there are seeds, isn't it?
तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष या पौधा पैदा होगा.
So as is the seed, so will be the tree or plant that grows out of it.
ऐसे थोड़े ही कि बीज होगा गेहूं का और पौधा पैदा हो जाएगा मटर का, चने का, नहीं.
It will not be so that if it is a seed of wheat, the plant that grows is of pea, gram. No.
तो हमारी आत्मा भी मनुष्य आत्मा है.
So our soul is also a human soul.
मनुष्य आत्मा जब भी जन्म लेगी तो मनुष्य का ही जन्म लेगी.
Whenever the human soul takes birth, it would take the birth of only a human being.
अब शास्त्रों में लिख रखा है.
Now it has been written in the scriptures.
कि मनुष्य आत्मा तो 84 लाख योनियों में जाती है.
That the human soul passes through the 84 lakh species.
84 lakh yoniyon mein agar atma jati hai.
If the soul passes through the 84 lakh species.
Aur bahut si atmaye bacche ke roop mein janm leti hain.
And when many souls take birth as children.
To apne purv janm ka vrittant bhi batati hui dekhi gayi hai.
They have been observed to describe the story of their past births.
Lekin koi bacche ne ye bataya ki hum purv janm mein कीड़े मकोड़े पशु पक्षी थे.
But has any child said that he was an insect or a worm or animal or a bird in the previous birth?
कोई नहीं बताया. इससे क्या साबित हुआ?
Nobody described. What does it prove?
कि कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी योनियों में जाती ही नहीं और जाने का कोई कारण भी तो चाहिए.
That no human soul ever takes birth in other species. And a valid reason is also required to go and take birth as another species.
कारण तो वो ये बता देते हैं.
they tell the reason that
कि कोई पाप कर्म करता है
if someone commits sins
तो उस पाप कर्म की भोगना भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है
he has to pass through the cycle of 84 lakh species to suffer punishments for that sin
तो 84 लाख योनियों में जाता है 84 लाख योनियों में जाता है
Does he pass through the cycle of 84 lakh species?
कारण क्या है क्यों जाएगा
What is the reason? Why would he pass through?
क्या मनुष्यों में रहकर के पाप कर्म नहीं भोगे जा सकते
Can one not experience the punishments for the sinful actions while being in the human species?
मनुष्यों में तो और ही ज्यादा इंद्रियां हैं
There are even more organs in the human species.
और जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं
And the animals, birds, worms and insects
उनमें इतनी इंद्रियां नहीं होती हैं
Do not have so many organs.
सांप है सांप को कान देखे
A snake for example. Have you seen the ears of a snake?
दिखाई नहीं पड़ते हाथ हैं
They are not visible. Does it have arms?
पांव हैं दिखाई नहीं पड़ते
Does it have limbs? They are not visible.
तो उनमें इंद्रियां कम है
सो दे हैव फ्यूअर ऑर्गन्स
तो उनके सुख दुख भी कम हो जाते हैं
हेंस देयर हैप्पीनेस एंड सोरोस ऑल्सो बिकम लेस
और मनुष्य के इंद्रियां हैं पूरी
एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑल द ऑर्गन्स
इसलिए उनके सुख दुख भी जास्ती हो जाते
दैट इज वाई दे एक्सपीरियंस मोर हैप्पीनेस एंड सोरोस
इंद्रियों से सुख भी भोगा जाता है और इंद्रियों से दुख भी भोगा जाता है
हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस थ्रू ऑर्गन्स एंड सोरोस आर ऑल्सो एक्सपीरियंस थ्रू द ऑर्गन्स
कोई आत्मा कितनी दुखी हो जाती
है सम सोल्स बिकम सो सोरोफुल
उनमें मूल कारण क्या है
वॉट इज द मेन रीजन
जानवरों को बैल को भैंस को गाय को डंडा मार दो
बीट द एनिमल्स लाइक बुल बफेलो और काउ विद अ स्टिक
जिस समय डंडा लगेगा उसी समय फील होगा
इट वुड फील द पेन जस्ट व्हेन इट इज बीटन विद अ स्टिक
बाद में जिंदगी भर उसे याद नहीं रहेगा
लेटर ऑन इट वुड नॉट रिमेम्बर थ्रू आउट लाइफ
और मनुष्य को डंडा तो छोड़ो
एंड व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स लीव द मैटर अबाउट स्टिक्स
कोई कड़ी बात कह दो तो जिंदगी भर याद रखेगा
If a human being is just told a harsh word, he would remember it throughout life.
इससे साबित हुआ कि 11वीं इंद्रिय जो मन है
It proves that the 11th organ, that is the mind,
जो अति सूक्ष्म है
Which is very subtle.
आत्मा की ही शक्ति है
It is a power of the soul itself.
ओ मन जितना आत्मा का सशक्त होगा
The more powerful the mind of a soul,
उतना ही वो सुख दुख जास्ती भोगता है
द मोर इट एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस एंड सोरोस
अब वो मन परमात्मा में होता है कि नहीं परमपिता में
वेल इज दैट माइंड प्रेजेंट इन द सुप्रीम सोल दैट इज इन द सुप्रीम फादर और नॉट
जिसको मन होगा वो मनन करेगा चिंतन करेगा
द वन हु पोजेसेस अ माइंड वुड थिंक एंड चर्न
जिसको मन नहीं होगा वो मनन चिंतन मंथन नहीं करेगा
द वन हु डज नॉट हैव माइंड वुड नॉट थिंक एंड चर्न
अब ठीक भी है जिसका जन्म मरण होता है वो मनन चिंतन मंथन भी करे
एंड दैट इज ट्रू टू द वन हु टेक्स बर्थ एंड डाइज वुड थिंक एंड चर्न एज वेल
जिसका जन्म मरण होता ही नहीं उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं
The one who does not take birth and die at all, does not require thinking and churning at all.
वो तो असोचता है.
He is asochita, the one who does not think.
क्या? अभोगता है. न सुख भोगता है, न दुख भोगता है.
What? He is abhokta. He neither experiences pleasures nor pain.
तो वो सुप्रीम सोल शिव है, जिसकी आत्मा का नाम ही शिव है.
So that supreme soul Shiv. The name of whose soul is Shiv.
बिंदु का नाम शिव है
The name of a point is Shiv.
उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार मनुष्यों ने बनाया ऋषियों मुनियों ने पूजा करने की सुविधा के लिए.
The human beings, the sages and saints made the large shape of that point of light for the sake of convenience of worship.
कि बिंदी का तो पता ही नहीं चलेगा, जल चढ़ाएंगे तो पता नहीं कहाँ लुढ़क जाए.
That one would not be able to know the point at all. If they pour water, then it is not sure where it would slip.
तो बिंदु का बड़ा आकार बनाया शिवलिंग.
So they made a bigger form of that point, a shivling.
और शिवलिंग को मंदिरों में रख दिया पूजा करने के लिए.
And the shivling was placed in the temple for worship.
बड़े आकार की पूजा की जा सकती है और छोटे आकार की तो पूजा हो ही नहीं सकती.
Big form can be worshipped and the small form cannot be worshipped at all.
तो दो रूप हुए.
So there are two forms.
एक तो बनाया हुआ बड़ा आकार.
One is a big form that is made.
जिसे लिंग कहा जाता है.
Which is called ling.
और वो लिंग में भी बिंदु रखते हैं.
And a point is also placed in the ling.
जैसे सोमनाथ मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर हिस्ट्री का हुआ है.
For example, there was a temple of Somnath. It is a very old temple in the history.
उस मंदिर में लाल रंग का पत्थर था.
In that temple, there was a red stone.
और उसमें हीरा जड़ा हुआ था.
And a diamond was studded in it.
काहे की यादगार?
What does it remind of?
Supreme Soul ज्योति बिंदु की यादगार हीरा.
The diamond is the reminder of the point of light Supreme Soul.
और उसका बड़ा आकार जो दिखाया गया है.
And its bigger form that has been depicted.
वो जिस साकार में प्रवेश करता है.
Is the corporeal in which he enters.
जिसमें ज्ञान का भंडार भर जाता है.
The one who gets filled with the treasure of knowledge.
ज्ञान की ज्योति भर जाती है.
Filled with the light of knowledge.
वो व्यक्त किया गया है.
That has been depicted in it.
माना वो सुप्रीम सोल शिव दो रूप से है.
It means that he is the supreme soul Shiv in two forms.
एक तो बिंदु आत्मा के रूप में.
One is in the form of the point like soul.
लेकिन वो बिना शरीर के कुछ भी कर नहीं सकता.
But he cannot do anything without the body.
और दूसरा उसका प्रैक्टिकल रूप है.
And the second is its practical form.
जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है एक व्यापी होकर.
The body in which he enters in a permanent form by entering into one.
उसके द्वारा सारे संसार को चेंज करता है, परिवर्तित करता है.
He changes, transforms the entire world through him.
दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाता है.
He transforms the world of sorrows into a world of happiness.
तो वो ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था.
So that point of light was shown in the Somnath temple in the form of Shivling.
बड़ा आकार है साकार की यादगार.
The big form is the memorial of the corporeal.
जिसमें वो शिव प्रवेश करता है.
In which that Shiv enters.
और उसका अति सूक्ष्म जो रूप है वो स्टार के रूप में दिखाया गया.
And his very subtle form has been shown in the form of a star.
हाथ पांव नाक आंख कान उसमें नहीं दिखाए गए.
Arms, legs, nose, eyes, ears have not been shown in it.
क्यों नहीं दिखाए गए?
Why have they not been shown?
इसलिए दिखाए नहीं गए कि जिस साकारी मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है.
They have not been shown because the corporeal human being in whom he enters in a permanent form.
वो साकारी तनधारी जब याद करते करते सुप्रीम सोल शिव को अति संपन्न स्टेज में पहुंचता है.
When that corporeal bodily being reaches the most perfect stage while remembering the supreme soul Shiv.
तो उसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता.
He does not remain conscious of his organs.
कान जैसे हैं, ऐसे नहीं कान उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, नहीं.
For example, the years are there. It is not that the years vanish or that the years get chopped off.
कान है लेकिन कानों से सुनते हुए भी न सुनना.
Ears are present, but not hearing in spite of listening through the ears.
हम नंबर वार आत्माओं की क्या हालत है?
What is the condition of number wise souls like us?
कोई छोटी सी बात कह देता है, दुर्वचन बोल देता है, ग्लानिंग कर देता है.
If anyone says something, if anyone utters bad words,
गाली दे देता है, तो हम तो कान के अंदर धारण कर लेते हैं.
If anyone defames, if anyone abuses, we retain it in our ears.
वो बात हमसे भूली? भूली नहीं जाती.
We are unable to forget that matter.
इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे कानों में हमारी आत्मा रखी हुई है.
It means that our soul is in our ears.
देहधारी का मतलब क्या हुआ?
What is the meaning of dehadari? That is a bodily being.
देह को धारण करने वाली कौन? आत्मा.
Who assumes the body? The soul.
लेकिन वो आत्मा देहधारी कब कही जाती है?
But when is that soul called a dehadari?
जब देह में उसका अटैचमेंट रखा हुआ है.
When it gets attached to the body.
नहीं तो ये भी तो कर सकता है आदमी कि कोई बात आलतू फालतू बोलता है.
Otherwise, a person can also do like this, that if anyone speaks wasteful matters,
झूठी बात बोलता है, अप्रिय लगने वाली बात नहीं बोलता है.
If anyone speaks lies, if anyone speaks things which do not appear to be sweet,
अशुद्ध बातें बोलता है, तो हम एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें.
If anyone speaks impure matters, then we should listen through one ear and leave it through the other.
सुप्रीम सोल में ये शिफ्ट है कि उसको तो अपनी देह है ही नहीं, इंद्रिया ही नहीं है.
The supreme soul has the speciality that he does not have his body at all. There are no organs at all.
तो ठीक है, इंद्रिया नहीं है तो उसको अटैचमेंट का सवाल भी नहीं है.
So it is all right. There are no organs. Then there is no question of attachment also.
लेकिन जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करके अपने आत्मा रूपी बच्चों की बातें सुनता तो है.
But when he enters, he listens to the versions of the soul like children.
आत्मा रूपी बच्चों का मुखड़ा देखता तो है.
He observes the faces of the soul like children.
अपने आत्मा रूपी जो भी बच्चे हैं उनकी एक्ट को जानता तो है.
He does know the act of all the soul like children.
परखता तो है.
He does judge them.
अगर ऐसा न हुआ होता,
had it not been so,
तो शिव का जो साकार विग्रह रूप दिखाया गया है, शंकर,
then the corporeal idol like form of Shiv which has been shown, that is Shankar,
और शंकर की आत्मा अलग है.
That soul of Shankar is different.
शिव की आत्मा अलग है. अंतर क्या है दोनों में?
The soul of Shiv is different. What is the difference between both of them?
शिव की आत्मा का ही नाम शिव है.
The name of only Shiv's soul is Shiv.
और शंकर का शरीर का नाम, विग्रह का नाम शंकर है.
And the name of Shankar's body, idol, is Shankar.
शंकर नाम किस लिए है?
Why is the name Shankar?
क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो काम के आधार पर नाम है.
It is because all the names mentioned in the scriptures are based on the acts that have been performed.
जैसा जैसा जिसने काम किया वैसा वैसा उनका नाम पड़ा.
As the task performed by someone, so is the name that they got.
तो ये शंकर नाम कैसे पड़ा?
So how was this name Shankar assigned?
उसमें निराकार भी काम करता है, जो सदैव निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है.
The incorporeal one who is forever incorporeal, egoless and without wife, performs the task through him.
वो कभी भी देह की विकृति में या देह की इंद्रियों की विकृति में आता ही नहीं है.
He never gets affected by the deformity or defect, that is vikriti of the body, or the vikriti of the organs of the body at all.
देह की इंद्रियों की विकृति में कभी ना आने के कारण उसको निराकारी, निर्विकारी कहा जाता है.
Because of not getting influenced by the vikriti of the organs of the body, he is called the incorporeal without vice.
देह का अहंकारी नहीं होता.
He does not have the ego of the body at all.
इसलिए निरहंकारी है.
That is why he is egoless.
लेकिन शंकर की आत्मा.
But what about the soul of Shankar?
Shankar माना mix.
Shankar means mix.
कहते ना वर्ण शंकर.
It is said वर्ण शंकर, isn't it?
स्त्री ब्राह्मण जाति की हो और पुरुष क्रिश्चियन हो.
If a woman is from the Brahmin caste and if the man is a Christian.
और जो पैदाइश होगी बच्चे की दोनों से उसको वर्ण शंकर कहेंगे.
And the child who is born through both of them would be called वर्ण शंकर.
माने मिक्स्ड पैदाइश हो गई.
It means it is a mixed creation.
तो ऐसे ही शंकर का जो रूप है उसमें दोनों ही बातें हैं.
So similarly the form of Shankar includes both aspects.
क्या समान रूप से दोनों ही बातें हो जाती हैं.
What? Both the aspects are equally present.
वो निराकारी भी 100% बन सकता है.
He can become 100% incorporeal.
और 100% साकारी भी बन सकता है.
As well as 100% corporeal.
वो निराकार उसमें प्रवेश करता है तो प्रैक्टिस करते करते.
That incorporeal enters into him. So, through practice.
राजयोग का अभ्यास करते करते क्योंकि शंकर को भी तो याद में बैठा हुआ दिखाते हैं.
Through the practice of Rajyoga, because Shankar is also shown to be sitting in remembrance.
जितनी भी देहधारी विग्रह हैं, मूर्तियां हैं.
All the idols, statues of bodily beings.
देवताओं की. तो देवता बने कैसे.
Of deities which exist, how did they become deities?
नर से नारायण बने कैसे.
How did they get transformed from a man to Narayan?
गीता में तो ज्ञान दिया है नर को नारायण बनाने का.
गीता contains the knowledge of transforming a man into Narayan.
नारी को लक्ष्मी बनाने का. लेकिन वो कैसे बने.
To transform a woman into Lakshmi. But how did they become?
मनुष्य से देवता बनने का तरीका क्या.
What is the method of getting transformed from a human being to a deity?
वो राजयोग जो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आकर के सिखाते हैं.
That Rajyoga which the Supreme Soul Shiv comes and teaches in this world.
उस राजयोग से उन्होंने अपने आत्मा को तामसी से क्या बनाई लिया. सतो प्रधान बनाई लिया.
Through that Rajyoga they transformed themselves from degraded ones to what? They made themselves pure.
विकारी आत्मा को जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भर चुके थे उसको निर्विकारी आत्मा अर्थात देवता बना लिया.
They transformed the vicious soul which was full of sex lust, anger, greed, attachment, ego into a soul without vices, that is a deity.
बनाने वाला कौन.
Who is the maker?
Supreme Soul Shiv.
The Supreme Soul Shiv.
किसके द्वारा बनाता. शंकर के द्वारा.
Through whom does he make? Through Shankar.
तो शंकर जो शरीरधारी है वो सदैव निराकारी नहीं है.
So Shankar the bodily being is not incorporeal forever.
हाँ जब राजयोग का अभ्यास करता है.
Yes when he practices Rajyoga.
क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं.
Because the Supreme Soul Shiv enters into him in a permanent form.
इसलिए जो संग का रंग लगता है उस संग के रंग से वो आत्मा सबसे पहले शिव समान बन जाती है.
So through the color of company that gets applied that soul becomes equal to Shiv first of all.
बाप शिव है आत्माओं का बाप है.
Father Shiv is the father of souls.
तो जो आत्माओं का बाप है तो आत्माओं को आप समान तो आकर बनाता है ना.
So the one who is the father of souls comes and makes the souls equal to himself, doesn't he?
अब ये पुरुषार्थ की बात है. कोई पहले आप समान बनेगा और कोई बाद में बनेगा.
Well it is a matter of making efforts. Someone would become equal to the father earlier and someone would become later.
कोई अपनी स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके बाप समान बनेगा.
Someone will make efforts voluntarily and become equal to the father.
और कोई पुरुषार्थ में करने में आनाकानी करेगा.
And someone will hesitate to make efforts.
उतना प्यार से पुरुषार्थ नहीं. कोई बच्चे प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं.
They will not make efforts that much affectionately. Some children study lovingly.
और कोई बच्चे धक्का मुक्की दे करके भी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं.
and some children do not study in spite of being pushed to do so.
लेकिन वो सुप्रीम सोल शिव तो सर्वशक्तिवान है.
But that supreme soul Shiv is almighty.
वो इस सृष्टि पर आता इसलिए है कि जो भी देहधारियों की देह अहंकारियों की दुनिया है उस देह अहंकारियों की दुनिया को समाप्त करके.
He comes in this world only to end the world of bodily beings, the world of body conscious people, the world of people with bodily ego.
निरहंकारी देवताओं की दुनिया बना के जाना.
And to create the world of egoless deities and then depart.
वो निरहंकारी देवताओं की दुनिया बनाने के लिए वो अभ्यास सिखाता है.
He teaches the practice to create that world of egoless deities.
जो अभी बताया, क्या बताया? बच्चों को बाप कहते हैं.
Which was mentioned just now. What was mentioned? The father tells the children.
कौन से बच्चों को कौन से बाप कहते हैं?
Which father tells which children?
रूहानी, जो रूह की स्टेज में टिकने का प्रयत्नशील है, बच्चे हैं.
The spiritual children. The children who make efforts to become constant in the spiritual stage.
अपने को रूह समझते हैं, दूसरों को रूह के रूप में देखते हैं.
They consider themselves to be souls and observe others in the form of souls.
ऋषियों महर्षियों ने भी ये बात को जाना था.
The sages and the great sages also knew this matter.
जब शास्त्र लिखे थे.
When they wrote scriptures.
लेकिन उस समय सतोप्रधान युग था.
But at that time, the age was pure, सतोप्रधान.
उस समय उन्होंने ये नियम बनाया.
At that time, they had framed a rule.
कि आत्मा भ्रकुटी में बैठती है, आत्मा स्टार है, इसलिए यहाँ बिंदी लगानी चाहिए.
That the soul sits in the middle of the forehead. A soul is a star. That is why the bindi should be applied here.
यहाँ आत्मा भ्रकुटी में टिकी हुई है, इसलिए टीका लगाना चाहिए.
The soul is situated over here in the middle of the forehead and hence a tika should be applied here.
उस समय सात्विक स्टेज थी.
At that time the stage was pure.
जिन्होंने सिखाया वो भी इस स्टेज में टिकते थे.
Those who taught, they themselves used to be constant in this stage.
और जिन्होंने सीखा वो भी स्टेज में टिके.
And those who learnt also became constant in that stage.
लेकिन बाद में क्या हुआ?
But what happened later on?
बाद में धीरे धीरे सृष्टि सतोप्रधान से तमोप्रधान बनती है या ऊंची उठती है.
Later on, does the world gradually get transformed from सतोप्रधान to तमोप्रधान or does it rise?
नीचे ही गिरना है.
It has to experience downfall.
देहधारियों के संग में आते आते अवस्था सबकी नीचे गिरेगी ही गिरेगी.
While being in the company of bodily beings, everyone's stage would certainly fall.
एक है ऊपर उठाने वाला और बाकी सारी दुनिया है नीचे गिराने वाली.
One uplifts and the rest of the world causes downfall.
वो ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने ये बात इजाद की.
Those sages, saints and sannyasis who invented this concept.
ये बात निकाली कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, स्टार हैं.
Who brought forward this matter that we are points of light souls, stars.
गीता में जैसे लिखा हुआ अणो अणीयांश मनुस्मरेति है.
For example, it is written in Gita.
अणो अणीयांश मनुस्मरेति है. अणु से भी अनुरूप यह आत्मा है.
This soul is subtler than an atom.
जैसे अणु होता है ना एटम, उससे भी ज्यादा अति सूक्ष्म है.
Just as there is an atom, it is even subtler than it.
इन आँखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी है.
It is not visible through these eyes, but still it exists.
मलेरिया बुखार आता है.
When one suffers from malarial fever,
तो डॉक्टर एक बूंद का टीका निकालता है.
Doctor extracts a drop of blood.
उसको शीशे में फैलाता है.
He spreads it on the glass.
हम लोगों को कुछ दिखाई पड़ता है? कोई कीड़ा दिखाई पड़ता है? नहीं.
Is anything visible to us? Is any germ visible to us? No.
फिर वो टेलीस्कोप से देखता है, मशीन से, तो उसमें कीड़े दिखाई पड़ते हैं.
Then he observes through microscope, through machine. Then the germs become visible in it.
वो पहचान जाता है कि हाँ ये कीड़े मलेरिया के कीड़े हैं.
He recognizes that, yes, these are the germs of malaria.
तो ऐसे ये बात नहीं है कि हमारी आंखें जिस चीज को देखेंगी उसको ही हम मानेंगे.
So it is not that we would accept only whatever is visible to us.
और आंखें जिसको नहीं देखेंगे उसको हम नहीं मानेंगे.
And we would not accept whatever is not visible to us.
आंखें भी तो यंत्र हैं.
eyes are also machines.
कोई की आंख बहुत तीखी होती है और कोई की आंख सामने बैठे हुए का चेहरा भी नहीं पहचान पाता.
Some people have a sharp eye and the eyes of some are not able to recognize even the face of those sitting in front of the eyes.
तो ऐसे ही वो यंत्र भी है.
So similar are those machines.
जिससे मलेरिया का कीटाणु देखा जाता है.
Through which the germs of malaria are observed.
वो यंत्र भी एक से एक पावरफुल भी होता है.
Even among those machines, one is better than the other.
बहुत बहुत पावरफुल होते हैं.
They are very very powerful.
यहाँ से बैठे बैठे वो बृहस्पति ग्रह में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, वो भी देखते हैं.
While sitting here, they even observe whatever is present on planet Jupiter, the location of the mountains, the location of the pits.
तो इससे साबित होता है कि मनुष्य जितना पावरफुल होगा उतनी वो पावरफुल रचना तैयार करेगा.
So it proves that the more powerful a human being is, the more powerful would be his creation.
परमपिता परमात्मा तो सबसे जास्ती पावरफुल है.
The Supreme Father, Supreme Soul is the most powerful.
वो बताता है कि ये तो विनाशी चीजें हैं और विनाशी यंत्र हैं.
He tells that these are destructible things and destructible machines.
लेकिन आत्मा तो अविनाशी है.
But the soul is imperishable.
इसमें इतनी पावर भरी हुई है.
It contains so much power.
इतनी पावर भरी हुई है कि आत्मा अगर आमादा हो जाए और पूरा पुरुषार्थ करे तो कुछ भी कर सकती है.
So much power that if the soul becomes resolute and makes complete efforts, it can do anything.
सारी दुनिया का विनाश भी कर सकती है और सारी दुनिया में नई सृष्टि की स्थापना भी कर सकती है.
It can destroy the whole world and it can even establish the new creation in the entire world.
इतनी पावर आत्मा में भरी हुई है.
The soul contains so much power.
लेकिन आत्मा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तब.
But it is when the soul becomes concentrated on itself.
देह को बिल्कुल भूल जाए.
It should forget the body completely.
तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाला जो श्रेष्ठ है, पुरुषार्थ ही निकलता है.
So the elevated effort maker who makes such efforts.
उसका नाम दिया गया है शास्त्रों में शंकर.
Has been named in the scriptures as Shankar.
वो एक ही ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है.
He alone is such a deity whose name is added with Shiv.
न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न जगदम्बा का, कोई भी देवता का नाम.
Neither Brahma's name, nor Vishnu's name, nor Jagadamba's. Names of none of the deities.
33 crore देवता हैं और उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता.
There are 33 crore deities and none of their names is added to Shiv.
जैसे अपनी भारतीय परंपरा है, जो बड़ा बच्चा होता है तो बच्चे, जो बड़ा बच्चा होता है वो राजाई का हकदार बन जाता है.
Like in our Indian tradition, the eldest child becomes entitled to kingship.
तो ऐसे ही शरीर रूपी ये दुम्ब धारण करके जो आत्मा इस रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं.
So similarly, the souls which play a part on this world-like stage by assuming this body-like tail.
उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्मा.
Among those actor souls, the soul playing the most powerful part.
और सबसे कमजोर पार्ट बजाने वाली आत्मा एक है.
And the soul which plays the weakest part is one.
जो 100% पतिति भी बनती है और 100% पावनी भी बनती है.
Which becomes 100% sinful as well as 100% pure.
उसका नाम शंकर रख दिया गया.
He has been named Shankar.
मिक्स पार्ट है उसके अंदर.
His part is a mixed part.
शिव की सोल का भी पार्ट है जो 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है.
His part includes the part of Shiv's soul, which is 100% incorporeal, without vices, egoless.
और फिर 100% देह अभिमानी का भी उसमें पार्ट.
And it also includes the part of the 100% body conscious one.
शंकर का काम क्या है?
What is the task of Shankar?
क्या खास काम दिखाते हैं शंकर को तीन मूर्तियों में? नहीं.
Among the three personalities, which particular task is shown for Shankar? Someone said, in the remembrance. No.
याद करना तो कोई काम ही नहीं होता है. काम तो कर्म इंद्रियों से किया जाता है.
Remembrance is not a task at all. Task is performed through the bodily organs.
संहार करना, विनाश करना.
To cause destruction, to destroy.
तो कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और दुनिया का विनाश करा दिया.
So it is said that he opened the third eye and caused the destruction of the world.
तो इतनी बड़ी दुनिया, उस दुनिया का संहार का काम शंकर का बताया.
So such a big world, the task of destruction of that world has been mentioned to be that of Shankar's.
है? शंकर का काम बताया गया.
Has been mentioned to be that of Shankar's.
फिर ये बताया कि पवित्रता से होती है स्थापना.
Then it has been said that purity causes establishment.
नई दुनिया बनती है, प्योरिटी वाली दुनिया.
The new world, the world of purity is created.
और अपवित्रता से होता है विनाश.
And impurity causes destruction.
माने वो आत्मा में ये संस्कार भरे हुए हैं.
It means that the संस्कार is contained in that soul.
ये सारे संसार का विष पी जाए, इतना विषैला है.
That even if he drinks the poison of the entire world, he is so poisonous.
तो भी उसका विनाश नहीं हो सकता.
Even then, he cannot get destroyed.
क्यों? क्यों नहीं हो सकता?
Why? Why can't it be possible?
पिया नहीं पिया सब बराबर.
हाँ, जैसे और इंद्रियों के लिए है.
Someone said, whether someone does it or not, it is one and the same. Yes. Just as it is for the other organs.
कानों से सुनते हुए न सुनना.
Not listening while hearing through the ears.
ऐसे ही जो कामेंद्रिय है, उस कामेंद्रिय में भी ऐसी शक्ति है.
Similarly, there is such power also in the sex organ.
कि वो चाहे तो मन उसमें लगाए, न चाहे तो न लगाए.
That if he desires, he may focus his thoughts on it, and if he does not desire, he may not.
जैसे हम आंखें खुली हुई बैठे होते हैं कभी, और सामने से कोई निकल जाते हैं, आते हैं.
For example, sometimes we are sitting with our eyes open, and if someone passes in front of our eyes or comes in front of us,
और हमको पता ही नहीं चलता कौन, दूसरा आदमी कहता है अरे तुम तो यहीं तो बैठे हुए थे.
And we are not able to know as to who. Another person says, hey, you were sitting here itself.
आंखें खोले तो बैठे हुए थे, कोई अंधे थोड़े ही.
You were sitting with your eyes wide open. You are not blind.
तुमने देख ही नहीं पाया. क्यों नहीं देख पाया?
Were you not able to see? Why was one not able to see?
क्योंकि मन कहीं दूसरी तरफ काम कर रहा था.
It is because the mind was working in some other direction.
तो ये जो मन है उसको कंट्रोल करना मनरेव आत्मा कहा जाता है. उस मन को केंद्रित करना ये एक प्रैक्टिस की बात है.
So to control the mind, it is said,
मनरेव आत्मा,
the mind itself is the soul. To concentrate the mind is a matter of practice.
मन को हमने ही 84 जन्मों में चंचल किया.
We ourselves made the mind inconstant in the 84 births.
देह और देह के संबंधियों में और देह के सुख भोगने के कारण.
In the body and bodily relationships and because of experiencing the pleasures of the body.
अनेकों देहधारियों से संबंध किया. अनेकों देहधारियों में बुद्धि गई.
We established relationships with many bodily beings. The intellect was diverted in many bodily beings.
उनसे सुख दुख का लेन देन किया तो मन हमारा बहुत चंचल हो गया, प्रैक्टाइज्ड हो गया.
We exchanged pleasures and pains with them. So our mind became very inconstant. It became practiced.
अभी आकर के बाप कहते हैं बच्चे समझाते हैं.
Now the father comes and says, children, he explains.
अभी क्या करूं? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं.
What should you do now? Now this is your last birth. एटम बॉम्ब्स आर रेडी.
क्या क्यों कि शंकर का जो काम है ना, क्या विनाश का.
व्हाट व्हाई शंकर्स टास्क इज देयर इजंट इट. व्हाट द टास्क ऑफ डिस्ट्रक्शन.
तो शंकर के नाम के साथ साथ उनकी काम की यादगार दिलाई जाती है.
सो अलोंग विद द नेम ऑफ शंकर हिज टास्क इज ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ.
क्या हर हर बम बम.
व्हाट हर हर बम बम.
जय शंकर.
जय शंकर.
शंकर के साथ वो बम शब्द जुड़ा हुआ है.
दैट वर्ड बम इज एसोसिएटेड टू शंकर.
बम का मतलब है वो ज्ञान का बम भी फोड़ते हैं.
बॉम्ब मीन्स दैट ही एक्सप्लोर्स द बॉम्ब्स ऑफ नॉलेज एज वेल.
और फिर स्थूल बम्ब भी उनके द्वारा एक्ट में आते हैं.
देन द फिजिकल बॉम्ब्स ऑल्सो कम इन टू एक्शन थ्रू हिम.
ये जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं,
द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे,
जिन्होंने ये एटमिक शक्ति बना के रखी है,
हु हैव प्रिपेयर्ड द एटमिक एनर्जी,
उनमें इतनी ताकत नहीं है.
डू नॉट कंटेन सो मच पावर.
वो खुद घबरा जाते हैं, अरे ये तो भयंकर विनाशकारी चीज बारूद तैयार हो गया.
दे देमसेल्व्स फियर, ओ दिस इज अ वेरी डेंजरस डिस्ट्रक्टिव थिंग एक्सप्लोसिव दैट हैज गॉट प्रिपेयर्ड.
उनमें शक्ति नहीं है उनको विस्फोट करने की.
दे डू नॉट हैव द पावर टू एक्सप्लोड देम.
लेकिन उनको किसी ने प्रेरित किया कि तुम ये बनाओ.
बट दे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय समवन. You prepare this.
So उन्होंने बना तो लिया.
So they did prepare them.
लेकिन जब तक जिसने प्रेरित किया है वो प्रेरणा नहीं देगा तब तक वो उसका विस्फोट नहीं कर सकते.
But until the one who has inspired gives inspiration, they cannot explode them.
और प्रेरणा कब देगा? वो तब प्रेरणा देगा जब नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न हो जाए.
And when would he give the inspiration? He would give the inspiration when the task of establishment of the new world is accomplished.
तो 70 साल हो गए इस ज्ञान को चलते चलते.
So it has been 70 years since this knowledge began.
माने भगवान को इस सृष्टि पर आकर के शिव को ये ज्ञान देते देते कितना टाइम गुजर गया? 70 साल गुजर गए.
It means to say how much time has passed since God came in this world, since Shiva has been giving this knowledge. 70 years have passed.
क्योंकि इतने लंबे टाइम में कुछ भी नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा?
Someone may say, nothing has happened in such a long time, so what will happen in future?
इसका जवाब ये है कि जितने भी धर्म पिताएं आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह.
The answer is that all the religious fathers who came, Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, etc.
उन सब ने भी 100 वर्ष के अंदर अपनी आयु के अंदर अपना धर्म स्थापन किया.
All of them have also established their religion within a period of 100 years, within their lifetime.
ऐसे ही उन धर्म पिताओं का बाप, बापों का भी जो बाप है इस सृष्टि पर जब आता है तो वो भी 100 साल का टाइम लेता है.
Similarly, when the father of those religious fathers, the father of fathers, comes to this world, he also takes 100 years time.
बल 70 साल गुजर चुके.
Although 70 years have passed,
उन 70 साल में ब्रह्मा का स्थापना का कार्य पूरा होता.
In those 70 years, the task of establishment by Brahma gets completed.
और शंकर का विनाश का कार्य भी मानसिक स्तर पर पूरा होता है.
एंड ऑल्सो द टास्क ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय शंकर गेट्स कम्प्लीटेड एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल.
स्थापना का मतलब क्या हुआ?
व्हाट डज एस्टैब्लिशमेंट मीन?
जो ब्राह्मणों की वृत्ति है, क्या वृत्ति होती है?
द प्रोफेशन ऑफ ब्राह्मण्स. व्हाट इज देयर प्रोफेशन?
ज्ञान लेना और दूसरों को ज्ञान देना.
ऑब्टेनिंग नॉलेज एंड गिविंग नॉलेज टू अदर्स.
ये कर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है.
दिस एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट राइटियस वन.
ज्ञान माना जानकारी.
नॉलेज मीन्स इन्फॉर्मेशन.
काय की जानकारी? सच्चाई की जानकारी.
इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ.
झूठी बातों की जानकारी नहीं.
not the information of false matters.
झूठ दुखदाई होता है सुखदाई? झूठ दुखदाई होता है.
Does falsehood cause sorrow or happiness? Falsehood causes sorrow.
और सत्य सुखदाई होता है.
And truth gives happiness.
सत्य से बनता है सतयुग और झूठ से बनता है कलयुग.
Truth, that is satya, leads to the golden age, that is satyug, and falsehood leads to the iron age, that is kaliyug.
तो परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सत्य ज्ञान सुनाते हैं.
So when the supreme soul comes in this world, he narrates the true knowledge.
सत्य ज्ञान जिसके द्वारा सुनाते हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मा.
The one through whom he narrates the true knowledge is called Brahma.
अब ब्रह्मा के चार मुख या पांच मुख दिखाई जाते हैं.
And Brahma is shown to possess four or five heads.
माना कोई चार पांच आत्माएं हैं.
It means that there are some four to five souls.
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष आत्माएं जिनमें वो आकर के अपना कार्य करता है.
Special souls on this world-like stage in whom he comes and accomplishes his task.
इसलिए ब्रह्मा को पंचानन चतुरानन कहते हैं.
That is why Brahma is called पंचानन, that is five-headed, चतुरानन, that is four-headed.
कौन सी चार आत्माएं हैं?
Which are the four souls?
चार पांच आत्माएं वो कौन सी हैं?
Which are those four or five souls?
उनका नाम शास्त्रों में बहुत बाला है. क्या?
They are very famous in the scriptures. What?
कोई भी नावल बनता है, कोई भी नाटक की किताब बनती है, कोई कहानी की किताब बनती है.
Whenever any novel is written, whenever a book of plays or drama is written, whenever a story book is written,
तो उसमें कोई ऐसा एक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बहुत बाला होता है.
Then some such actor is depicted in it who becomes very famous.
उसको कहते हैं हीरो पार्टधारी.
He is called the hero actor.
तो सृष्टि रूपी रंगमंच के भी दो हीरो हीरोइन हैं.
Also on this world like stage there are a hero and a heroine.
एक राम और एक कृष्ण.
वन इज राम एंड द अदर इज कृष्ण.
राम वाली आत्मा भी 84 के चक्र में आती है और कृष्ण वाली आत्मा भी 84 के चक्र में आती है.
द सोल ऑफ राम ऑल्सो पासिस थ्रू द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स एंड द सोल ऑफ कृष्ण ऑल्सो पासिस थ्रू द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स.
राम वाली आत्मा में आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रूप से परमात्मा शिव प्रवेश करके अपना काम करते.
द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द सोल ऑफ राम in a permanent manner from the beginning till the end and performs his task.
और दूसरे जो ब्रह्मा दिखाए गए हैं ब्रह्मा के रूप में उनमें सदा काल प्रवेश नहीं होता.
And he does not enter forever in other brahmas who are depicted in the form of brahma.
शिव आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं.
When shiv comes he establishes the brahmin religion through brahma.
जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही सत्युग त्रेता में जाके देवता बनेंगे.
ओनली दोज हु बिकम ब्राह्मिन्स गो एंड बिकम डेटीज इन द गोल्डन एज एंड सिल्वर एज.
ये सबसे ऊंची जाति है, ऊंचा वर्ण है.
दिस इज द हाईएस्ट कास्ट, इट इज अ हाई रेस.
इसलिए भक्ति मार्ग में आज भी क्षत्रियों को बुला के भोजन नहीं कराते.
दैट इज वाई इन द पाथ ऑफ वर्शिप इवन टूडे क्षत्रियाज आर नॉट इन्वाइटेड टू हैव मील्स.
वैश्यों को भोजन बुला के भोजन नहीं कराएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे.
वैश्यास आर नॉट इन्वाइटेड टू हैव मील्स, दे आर नॉट वर्शिप्ड.
ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं.
ब्राह्मिन्स आर इन्वाइटेड, दे आर ऑफर्ड फूड.
पांव छूते हैं, पूजा करते हैं, दक्षिणा देते हैं.
देयर फीट आर टच्ड, दे आर वर्शिप्ड, दे आर गिवन दक्षिणा, दैट इज अ जेस्चर इन कैश ऑफ काइंड in return for the religious services rendered by the brahmins to the householders.
Hai kahan ki baat?
When is this matter about?
Is samay bhagwan jab is srishti par aate hain kaliyug ke ant mein.
In the present time when god comes in this world at the end of the iron age.
Kaliyug ko jhoot yug ko sach khand banane ke liye.
To transform the age of falsehood into a land of truth.
To brahman taiyar karte hain.
He prepares brahmins.
Kaise taiyar hote hain?
How do the Brahmins get prepared?
ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए.
It is not so that just as it has been written in the scriptures that Brahmins were born from the mouth of Brahma.
कोई मशीन रखी हुई थी.
that a machine was present in his mouth.
हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े? नहीं.
He uttered hua and the Brahmins emerged. No.
जिस ब्रह्मा की तन में परमात्मा शिव प्रवेश करके मुख से ज्ञान सुनाते हैं.
The Brahma in whose body the Supreme Soul Shiv enters and narrates knowledge through the mouth.
उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं वो ब्राह्मण कहे जाते हैं.
Those who imbibe that knowledge in their life and make others imbibe it are called Brahmins.
तो ब्राह्मण 70 साल से तैयार हो रहे हैं.
So those Brahmins are getting prepared since 70 years.
लेकिन ब्राह्मण सब एक जैसे होते हैं क्या?
But are all Brahmins alike?
भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई हुई हैं.
In the path of worship, 9 categories of Brahmins are famous.
कहते हैं 9 ऋषि हुए थे.
It is said there were 9 sages.
उन 9 ऋषियों से जो पैदाइश हुई, जनरेशन बढ़ी.
The progeny that was born through those 9 sages, the generation that increased.
वो 9 प्रकार के गोत्र वाले 9 ग्रुप हो गए ब्राह्मणों के.
Constituted 9 groups of Brahmins belonging to 9 gotras. कैटेगरीज.
वास्तव में वो कोई गोत्र अलग बात नहीं है.
एक्चुअली दोस गोत्रास आर नॉट अ सेपरेट मैटर.
आज दुनिया में जो 9 धर्म फैले हुए हैं उन्हीं की बात है.
इट इज अ मैटर ऑफ द 9 रिलीजियंस दैट आर प्रिविलेंट इन टूडेज वर्ल्ड.
सतयुग में सूर्यवंश, त्रेता में चंद्रवंश,
सन डायनेस्टी इन द गोल्डन एज, the moon dynasty in the silver age,
dwapar mein islami, bodhi, christian,
islamic people, buddhists, christians in the copper age.
Kitne hue? 5.
How many are they in total? 5.
uske baad aate hain sanyasi, muslim, sikh aur arya samaj.
After that comes the sanyasis, the Muslims, the Sikhs and the Arya Samaji.
ये 9 धर्म जो दुनिया में फैले हैं,
these 9 religions that are spread out in the world,
ये वास्तव में इनकी उच्च कोटि की जो जनरेशन हुई है, जहाँ से इनका फाउंडेशन पड़ा है सृष्टि में, वो 9 प्रकार के ब्राह्मण कहे गए.
Are actually the 9 types of Brahmins of the highest generation from where their foundation was laid in the world.
उन ब्राह्मणों के 9 गोत्र हुए.
There were 9 gotras of those Brahmins.
उनकी शुरुआत करने वाले कोई तो होंगे.
There must be someone who started them.
जो पहले देवता बने होंगे.
Who must have become deities first of all.
इसलिए अपने यहाँ जो भी अनुष्ठान किया जाता है,
That is why the religious rituals that are performed here,
तो अनुष्ठान में 9 ग्रह बनाए जाते हैं.
In those religious rituals, 9 planets are prepared.
उन नवग्रहों की पूजा करते.
People worship those 9 planets.
उनमें अष्टदेव हैं.
Among them, the 8 deities are included.
क्या? जो 8 हैं, वो देव कोटि के हैं.
What? The 8 belong to the class of deities.
और सृष्टि के पूर्वज हैं.
And are the ancestors of this world.
उनमें जो 9वां जोड़ा हुआ है, वो valueless.
Among them, the 9th one who has been added is valueless.
उसकी वैल्यू ना के बराबर है. किस लिए दिया गया है? दूसरों की वैल्यू को बताने के लिए.
Its value is negligible. What for has it been added? To show the value of others.
जैसे हिस्ट्री में कोई राजाएं होते थे.
For example, there used to be kings in the history.
महाराजाएं होते थे, उनके दरबार में 9 रतन बहुत श्रेष्ठ माने जाते थे.
There used to be Maharajas in the history. In their courts, 9 gems were considered very great.
ऐसे ही ये परमात्मा के दरबार में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं पार्टधारी, उनमें ये 9 विशेष आत्माएं हैं.
Similarly, among all the 5 to 7 billion human souls, actors in this court of the Supreme Soul, these 9 souls are special.
जो रतन के रूप में है.
Who are in the form of gems.
उनमें कोई है हीरा के रूप में पार्ट बजाने वाली.
Among them, some play the part in the form of diamonds.
कोई माणिक के रूप में पार्ट बजाने वाली.
Some play a part in the form of rubies.
कोई मोती के रूप में पार्ट बजाने वाली,
सम प्ले अ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ पर्ल्स,
ऐसे ऐसे ये नौ रतन एक दूसरे की वैल्यू को बताते हैं।
सिमिलरली दीज नाइन जेम्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ईच अदर,
जैसे जैसे इनकी वैल्यू कम वैसे वैसे वो आत्मा अपने धर्म स्थापन करने के लिए लास्ट में निमित्त बनती है।
द लेसर देयर वैल्यू द लेटर दे बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग देयर रिलीजन।
सूर्यवंश की स्थापना सूर्य से होती है।
द सन डायनेस्टी गेट्स एस्टैब्लिश्ड थ्रू द सन।
चंद्रवंश की स्थापना चंद्रमा से होती है।
द मून डायनेस्टी गेट्स एस्टैब्लिश्ड थ्रू द मून।
इस्लाम वंश की स्थापना इब्राहिम से होती है।
द इस्लामिक डायनेस्टी गेट्स एस्टैब्लिश्ड थ्रू इब्राहिम।
क्रिश्चियन वंश की स्थापना क्राइस्ट से।
द क्रिश्चियन डायनेस्टी गेट्स एस्टैब्लिश्ड थ्रू क्राइस्ट।
बुद्ध से बौद्ध धर्म की स्थापना,
बुद्ध एस्टैब्लिशेस बुद्धिज्म।
तो ये नंबर वार आते जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर।
सो दे कीप ऑन कमिंग नंबर वाइज ऑन दिस वर्ल्ड लाइक स्टेज।
और जैसे जैसे आते जाते हैं पृथ्वी का आकार चौड़ा होता जाता है।
एंड एज एंड व्हेन दे कम द फॉर्म ऑफ द अर्थ कीप्स एक्सपैंडिंग।
पहले जब सूर्यवंश था इस सृष्टि पर तो सिर्फ भारत में थोड़ा सा जम्बू द्वीप का स्थान था।
अर्लियर when there was sun dynasty in this world there was a small area in india in the form of a continent।
dakshin bharat ke ye samudra ke ilake the hi nahi।
these coastal areas of the southern india were not present at all।
but jaise jaise ye dusre dharm wale dharm pitaye aate gaye,
then as and when other religious fathers continued to come,
in dharmon ki jansankhya badhti gayi,
the population of these religions went on increasing।
और जो सीधे साधे देवताएं थे वो इनके चक्कर में आ गए। किसके चक्कर में?
एंड द इनोसेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटीज गॉट एंट्रैप्ड बाय देम। इन हूज ट्रैप?
इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के चक्कर में, ये बड़े चांगड़े हैं।
इन द ट्रैप ऑफ इस्लामिक पीपल बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस दे आर वेरी कनिंग।
तो इनके चक्कर में आने से ये देवताएं जो भोले भाले थे वो सब संघ के रंग में कन्वर्ट होते चले गए।
So, by getting entrapped by them, these deities who were innocent went on getting converted under the influence of their company।
History में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि देव आत्मा ही जो हिंदू धर्म के हैं वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए।
It has always happened in the history that only the deity souls who belong to Hinduism got converted to other religions।
दूसरे धर्म वाले कभी हिंदुओं में कन्वर्ट नहीं हुए।
People belonging to other religions never got converted to Hindus।
तो और धर्मों की जनसंख्या देखो कितनी बढ़ गई दुनिया में।
सो लुक द पॉपुलेशन ऑफ अदर रिलीजन्स इंक्रीज सो मच इन द वर्ल्ड।
और हिंदुओं की जनसंख्या बहुत थोड़ी रह गई।
एंड द पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज रिमेन्ड वेरी लेस।
तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो भगवान स्थापन करता है सच्चा धर्म।
सो द आदि सनातन देवी देवता धर्म दैट इज द एंशियंट डेटी रिलीजन the true religion which god establishes,
wo dharma prayah lop ho jata hai,
that religion almost disappears,
khatm nahi ho sakta kyunki bhagwan ne uski sthapna ki hai,
it cannot vanish because god established it,
lekin viral dikhai padta hai,
but it is scarcely visible।
ab usi prayah lop dharm ko sthapan karne ke liye wo gyan surya parmatma ko is srishti par phir aana padta hai।
now that son of knowledge Supreme Soul has to come again on this world to establish the same religion which has almost disappeared।
उसके लिए बताते हैं कि देखो अनेकों के संबंध संसर्ग में प्रभाव में आते आते तुम भारतवासी अब एकदम क्या हाल तुम्हारा हुआ पड़ा है।
For him it is said that look while coming in the relationship contact and influence of many you Bharatvasis that is residents of Bharat have reached such a condition।
जो तुम सारी दुनिया में सरताज थे,
यू वेर द क्राउन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड,
वो अब तुम दूसरे देशों के मोहताज बने हुए हो।
एंड नाउ यू हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज।
क्या कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो दूसरे देशों की तरफ देखते हैं।
वॉट वेन एवर एनी प्लानिंग इज टू बी मेड दे लुक टूवर्ड्स अदर कंट्रीज।
ये हमको भीख दे दें, जैसे अब ये सड़कें बनना शुरू हुई हैं ऑल इंडिया में।
That they might give us arms, जस्ट एज द रोड्स आर बीइंग लेड ऑल ओवर इंडिया.
नेशनल हाईवे बन रहे हैं.
नेशनल हाईवेज आर बीइंग लेड.
तो इनमें ताकत नहीं है कि ये काम कर सके.
सो दे डू नॉट हैव द पावर टू अकम्प्लिश दिस टास्क.
तो विश्व बैंक से पैसा ले रहे हैं.
सो दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक.
तो दूसरे दूसरे देश जो है उन्होंने फिर सही कर दिया, अच्छा दे दो इनको.
सो द अदर कंट्रीज साइंड एंड कंसेंटेड. ओके गिव देम.
तो मोहताज हुए या सरताज हुए? मोहताज है.
सो आर दे डिपेंडेंट और आर दे अ क्राउन? दे आर डिपेंडेंट.
आज इस मोहताज भारत को जो भिकमंगा भारत बन गया है.
टुडे दिस डिपेंडेंट भारत विच हैज बिकम अ बेगर भारत.
दूसरे देशों देशों से भीख मांगता रहता है.
इट कीप्स ऑन बेगिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज.
उस देश को फिर से सरताज बनाने के लिए परमात्मा शिव आते हैं.
टू मेक दैट कंट्री अ क्राउन वंस अगेन सुप्रीम सोल शिव कम्स.
तरीका बताते हैं, देखो अनेकों के संग के रंग से तुम्हारी क्या दुर्गति हो गई.
एंड ही टेल्स द मेथड. लुक हाउ बैड हैज योर कंडीशन बिकम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी ऑफ मेनी.
अब तुम जो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है.
नाउ यू रिमेम्बर द वन हु इज द मोस्ट राइटियस वन.
जिसको सारी दुनिया याद करती है.
हुम द एंटायर वर्ल्ड रिमेम्बर्स.
क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई.
वेदर इट इज द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स और द क्रिश्चियंस.
हिंदू उसको भगवान कहते हैं, अंग्रेज उसको गॉडफादर कहते हैं.
हिंदूज कॉल हिम भगवान, इंग्लिशमैन कॉल हिम गॉडफादर.
और मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं.
एंड द मुस्लिम्स कॉल हिम अल्लाह.
सब उसको याद करते हैं.
एवरीवन रिमेम्बर्स हिम.
उन सब धर्म पिताओं का भी वो बाप है.
ही इज द फादर ऑफ दोज रिलीजियस फादर्स टू.
वो ऊंचते ऊंच बाप. मैं इस सृष्टि पर आता हूँ.
व्हेन आई दैट हाईएस्ट ऑन हाई फादर कम इन दिस वर्ल्ड.
तो तुम भारतवासियों को आकर के उठाता हूँ पहले.
आई अपलिफ्ट यू भारतवासी रेसिडेंट्स ऑफ भारत इनिशियली.
क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं पूरे.
बिकॉज You alone have taken complete 84 births.
All round Sasti Rupi Rangamanch par tumne part bajaya hai.
You have played an all round part in this world like stage.
Aur to beech mein aate hain aur ye pehle hi khalas ho jayenge.
Others come in between and they would perish first.
Kya? Aaj se 500 saal pehle America thi kya?
What? Did America exist 500 years ago?
America ka naam nishan nahi tha.
There was no name or trace of America.
जो क्रिश्चियंस अमेरिका में इतने फैले हुए हैं अभी.
और द क्रिश्चियंस हु आर सो वाइड स्प्रेड इन अमेरिका टूडे.
ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलिया.
सिमिलर इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया.
आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी किसी को पता नहीं था.
300 years ago, nobody knew about the name or trace of Australia.
ये सारे ही विदेशी धर्मखंड आज से 2500 साल पहले थे ही नहीं.
2500 years ago, all these foreign religious lands did not exist at all.
सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे.
All were submerged under the ocean.
जैसे जैसे ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते गए, उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए.
As and when these religious fathers belonging to other religions came, their followers increased.
वैसे वैसे दूसरे धर्मखंड समुद्र से ऊपर आते गए.
And correspondingly, the other religious lands went on emerging from the ocean.
और दुनिया की जनरेशन बढ़ती गई.
And the generation of the world went on increasing.
अभी दुनिया की जनरेशन इतनी जास्ती बढ़ गई है.
Now the generation of the world has increased so much.
कि कोई कंट्रोल करना चाहे तो अब कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं.
That if anyone wishes to control it, there is no question of controlling it.
दुनिया में बड़े बड़े आए महापुरुष.
Great men came in this world.
और दुनिया की हालत उन्होंने संभालने के लिए सारी ताकत लगाई.
And they invested their entire power to control the situation of the world.
लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है या ऊंची उठ रही है.
But is the world going on experiencing downfall or is it rising?
नीचे गिरने का क्या मतलब?
What does it mean by experiencing downfall? Someone said sinful.
पतित का मतलब क्या है?
What does sinful mean?
कि सबके विचार नीचे गिरते जा रहे हैं.
It means that everyone's level of thoughts is falling down.
जो स्नेह है, सौहार्द है, सहनशीलता है,
लव, हार्मनी, टॉलरेंस,
सहयोग की शक्ति है, सहयोग, वो सब घटता जा रहा है।
पावर ऑफ कॉपरेशन, ऑल दैट इज डिक्रीजिंग।
और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, वैमनस्य भाव, ये बढ़ता जा रहा है।
एंड जेलसी, एनिमिटी टुवर्ड्स वन अनदर इज इंक्रीजिंग।
दुर्गुण बढ़ रहे हैं और गुण घटते चले जा रहे हैं।
वाइसेस आर इंक्रीजिंग एंड द वर्च्यूज आर डिक्रीजिंग।
गुण होते हैं देवताओं में और दुर्गुण होते हैं राक्षसों में।
डेटीज हैव वर्च्यूज एंड डेमन्स हैव वाइसेस।
आज सारी दुनिया राक्षस बन गई।
टुडे द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम अ डेमन।
एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर सच्चा ही संकल्प आता हो।
देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु क्रिएट्स ओनली ट्रू थॉट्स इन हिज माइंड।
दुष्ट संकल्प न आता हो।
और हु डज नॉट क्रिएट एनी विकेट थॉट।
सारी दुनिया जब राक्षस बन जाती है, राक्षसों के प्रभाव में आते आते,
व्हेन द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स अ डेमन बाय कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेमन्स।
भारत का देखो क्या हाल है।
लुक व्हाट इज द कंडीशन ऑफ भारत।
विदेशी संस्कृति को अपना करके और जैसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, व्यभिचारी कर्म।
बाय अडॉप्टिंग फॉरेन कल्चर पीपल आर परफॉर्मिंग सच एक्शंस, सच एडल्टरस एक्शंस,
जिन्हें गीता में बिल्कुल मना किया हुआ है।
विच हैव बीन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन गीता।
गीता में ज्ञान दिया है एक तरह का।
गीता कंटेन्स वन काइंड ऑफ नॉलेज।
और आचरण कर रहे हैं बिल्कुल उल्टा, दूसरी तरीके का।
एंड पीपल आर बिहेविंग इन अ कम्प्लीटली ऑपोजिट मैनर।
तब भगवान आकर के कहते हैं, बच्चे अभी मैं आया हुआ हूँ।
देन गॉड कम्स एंड सेज, चिल्ड्रन नाउ आई हैव कम।
तुम अपन को देह नहीं समझो, क्या समझो, आत्मा समझो।
डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ बॉडी, वॉट शुड यू कंसिडर, कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल।
और आत्मा समझ करके मुझे आत्माओं के बाप परमात्मा शिव को, ज्योति बिंदु को याद करो।
एंड रिमेम्बर मी द फादर ऑफ द सोल्स, द सुप्रीम सोल शिव, द पॉइंट ऑफ लाइट।
उसको याद करने से क्या होगा,
वॉट वुड हैपन बाई रिमेम्बरिंग हिम।
याद करेंगे तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे।
If we remember, then as is the person or thing we remember, so we will become.
चोर डकैतों को याद करेंगे।
If we remember thieves and dacoits,
तो चोरी डकैती के गुण आ जाएंगे, हम भी चोर डकैत बन जाएंगे।
Then we would develop the features of theft and dacoity. We would also become thieves and dacoits.
अब ऊंचे से ऊंचे जो पार्टधारी है परमात्मा शिव,
and the highest actor, that is the supreme soul Shiv,
जिसको सारी दुनिया के हर धर्म के लोग मानते हैं,
होम द पीपल ऑफ एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बिलीव,
धर्म पिताएं भी मानते हैं, गुरु नानक भी किसकी तरफ इशारा करते थे, एक ओंकार निरंकार।
द रिलीजियस फादर्स ऑल्सो बिलीव, गुरु नानक ऑल्सो यूज टू पॉइंट टूवर्ड्स होम, एक ओंकार निरंकार,
उसी की तरफ इशारा करते थे ना। तो वो ही ऊंचे से ऊंचा करतार इस सृष्टि पर फिर से आया हुआ है।
ही यूज टू पॉइंट आउट टूवर्ड्स हिम ओनली, सो द सेम हाईएस्ट एंड हाई एनेबलर has come in this world again.
तो पहली बात है मेरे को पहचानो।
So the first thing is recognize me.
क्या इन आँखों से देख करके नहीं पहचानेंगे?
What? You would not recognize by seeing through these eyes.
कैसे पहचानेंगे? ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलेगा।
How would you recognize? When the third eye would open.
तो त्रिनेत्री बाप ही बच्चों को तीसरे नेत्र के द्वारा अनेक जन्मों का ज्ञान देते।
The three-eyed father himself gives the knowledge of many births through the third eye.
तो बताया कि रोज बाबा बच्चों को समझाते हैं।
So it has been said, Baba explains to the children every day.
70 साल हो गए समझाते समझाते।
70 years have passed in explaining.
और अभी तक प्रैक्टिस पूरी नहीं की, क्या प्रैक्टिस?
And the practice has not been completed even now. Which practice?
अपन को आत्मा समझकर बैठो और आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा शिव को,
सिट कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी अ सोल,
हाँ, जिस साकार मुकर्रर रथ में आता हूँ उसको पहचानो।
एंड रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ सोल्स, द सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल शिव, इन द चोजन कॉर्पोरियल चैरियट इन विच ही कम्स।
और पहचान करके याद करो।
एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिम, रिमेम्बर हिम।
किसको याद करो?
Whom should you remember?
न सिर्फ निराकार को याद करो,
do not remember just the incorporeal.
न सिर्फ साकार को याद करो.
Or do not remember just the corporeal.
उस साकार में जो निराकार आया हुआ है, जो ऊंचे ऊंचे पार्टधारी है, उसको याद करो.
Remember the incorporeal one who has come in that corporeal one, the one who is the highest actor.
Oh.